यरूशलेम में हेलियोदोरस, सिमोन का विश्वासघात। अध्याय 3। पवित्र नगर में शांति का साम्राज्य था और जनता विधि निषेधों का अच्छी तरह पालन करती थी, क्योंकि प्रधान याजक ईश्वर भक्त था और बुराई से घृणा करता था। राजा लोग भी पवित्र स्थान का सम्मान करते थे और मंदिर को बहुमूल्य उपहार चढ़ाते थे। एशिया का राजा सिलुकस तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से मंदिर के बलिदानों का आवश्यक खर्च देता था, किंतु बिलगावंशी सिमोन नामक एक व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। नगर के बाजारों के निरीक्षण के विषय में उसका प्रधान याजक से मतभेद हो गया। जब वो ओनियस को प्रभावित नहीं कर सका तो थर्सूस के पुत्र अपोलोनियस के पास गया, जो उस समय केले सीरिया और फेनिके का शासक था। सिमोन ने उसे ये बताया कि यरूशलेम के कोषागार में इतनी संपत्ति भरी है कि उसका कुल जोड़ निकालना असंभव है और बलिदानों के खर्च से उसकी कोई तुलना नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो संपत्ति राजा को दिलाई जा सकती थी। जब अपोलोनियस राजा से मिला तो कोष के संबंध में उसे जो कुछ बताया गया था उसने वो सब राजा से कहा। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हेलियोदोरस को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि वो वहां जाकर वो संपत्ति जब्त करे। हेलियोदोरस तुरंत चल पड़ा। उसने ये बहाना किया कि वो केलेसीरिया और फेनिके के नगरों के दौरे पर जा रहा है, लेकिन सच तो ये था कि वो राजा का उद्देश्य पूरा करने गया। यरूशलेम में हेलियोदोरस। जब वो यरूशलेम पहुंचा तो नगर के प्रधान याजक ने सद्भावना से उसका स्वागत किया। हेलियोदोरस ने बतलाया कि उसने क्या सुना है और ये भी स्पष्ट किया कि वो क्यों आया है। उसने पूछा कि सुनी हुई बात कहां तक सच है। प्रधान याजक ने उसे बतलाया कि ये कोष विधवाओं और अनाथों का है और इसका कुछ भाग टोबियाह के पुत्र हिरकानस का है, जो एक बड़ा पदाधिकारी है। बात वैसी नहीं है जैसी विधर्मी सिमोन ने बताई है। कोष में कुल मिलाकर 400 मन चांदी और 200 मन सोना है। ये भी असंभव था कि उन लोगों का रुपया ले लिया जाए जिन्होंने इस स्थान की पवित्रता और संसार भर में प्रसिद्ध मंदिर की परम पावन अनुल्लंघनीयता पर विश्वास किया था। किंतु हेलियोदोरस ने राजा का आदेश दृष्टि में रखकर इस बात पर बल दिया कि वो संपत्ति राजकोष में रखी जानी चाहिए। उसने मंदिर में प्रवेश करने और कोष के निरीक्षण के लिए जो दिन निश्चित किया उसने उसी दिन मंदिर में प्रवेश किया। इस पर सारा नगर भयभीत हो उठा। याजक अपने याजकीय वस्त्र धारण कर और मुंह के बल गिरकर ईश्वर से, जिसने मंदिर में रखी हुई संपत्ति के विषय में नियम बनाया था, ये प्रार्थना करते थे कि वो उन लोगों की संपत्ति की रक्षा करे जिन्होंने उसे मंदिर में रखवाया था। प्रधान याजक को देखकर कोई भी व्यक्ति अप्रभावित नहीं रह सकता था। उसके चेहरे का मनोभाव और पीला रंग उसकी आत्मा का दुख व्यक्त करता था। वो अत्यंत भयभीत था और उसका सारा शरीर इस प्रकार कांप रहा था कि जो भी उसे देखता वो समझ जाता कि उसके हृदय में कितनी तीव्र वेदना है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते थे, जिससे मंदिर का अपवित्रीकरण नहीं हो पाए। स्त्रियां छाती के नीचे टाट के कपड़े पहनकर गलियों में एकत्र हो जाती थीं। लड़कियां जो प्रायः घर के अंदर ही रहती थीं, अब झुंड बनाकर मंदिर के फाटकों या दीवारों की ओर दौड़ती या खिड़कियों से बाहर देखती थीं। सभी स्वर्ग की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करती थीं। ये दृश्य कितना करुणाजनक था। सभी लोग मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते थे और प्रधान याजक भावी अनिष्ट की आशंका से अत्यंत व्याकुल था। जिस समय सभी प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उन लोगों की संपत्ति की पूरी पूरी रक्षा करे जिन्होंने उसे मंदिर में रखवाया था, उस समय हेलियोडोरस ने अपना संकल्प पूरा किया। प्रभु द्वारा कोष की रक्षा। जब वो अपने अंगरक्षकों के साथ कोष के पास पहुंचा तो आत्माओं का सर्वशक्तिमान प्रभु उसके सामने इतनी महिमा के साथ प्रकट हुआ कि जितने लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने का साहस किया था वे सभी ईश्वरीय तेज के सामने अशक्त और निरुत्साह हो गए। उन्हें सुसज्जित घोड़े पर एक भयानक आकार वाला घुड़सवार दिखाई पड़ा। वो घोड़ा हेलियोडोरस पर टूट पड़ा और उसने उस पर अपनी अगली टापों से प्रहार किया। घुड़सवार सोने का कवच पहने था, भड़कीले वस्त्र पहने दो अत्यंत बलवान और सर्वांग सुंदर नवयुवक दिखाई पड़े। वे हेलियोडोरस के दोनों ओर खड़े होकर उसे निरंतर कोड़े लगाते हुए मारते थे। हेलियोडोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधकार छा गया। तब उसे उठाकर एक तख्ते पर रखा गया। वो जो दलबल और अंगरक्षकों के साथ उपर्युक्त कोष के पास पहुंचा था अब अशक्त होकर बाहर ले जाया जा रहा था। उसने ईश्वरी सामर्थ्य का अनुभव किया। वो ईश्वरी सामर्थ्य के प्रभाव के कारण बोलने में असमर्थ होकर पड़ा रहा और उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। हेलियोडोरस की प्राण रक्षा। उधर लोगों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अपने मंदिर की महिमा की रक्षा की थी। वो मंदिर जो अभी अभी भय और आतंक से आच्छादित था अब हर्ष और उल्लास से गूंज उठा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु वहां दिखाई पड़ा था। हेलियोडोरस के कुछ साथियों ने ओनियस से तुरंत ये निवेदन किया कि वो सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करे जिससे वो मरणासन्न हेलियोडोरस को जीवन प्रदान करे। राजा कहीं ये न सोचे कि यहूदियों ने हेलियोडोरस को छलकपट से मारा है, इसलिए प्रधान याजक ने उसकी प्राण रक्षा के लिए बलिदान चढ़ाया। प्रधान याजक अभी प्रायश्चित बलि चढ़ा ही रहा था कि उसी समय हेलियोडोरस को वे दोनों नवयुवक वही वस्त्र पहने दिखाई पड़े। उन्होंने उसके सामने आकर उससे कहा, तुम्हें प्रधान याजक ओनियस को बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनकी प्रार्थना के कारण प्रभु ने तुमको जीवन प्रदान किया है। ईश्वर ने तुमको दंड दिया, इसलिए तुमको सबों के सामने ईश्वरीय सामर्थ्य की महिमा घोषित करनी चाहिए। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। हेलियोडोरस द्वारा प्रभु की महिमा का वर्णन। हेलियोडोरस ने भी प्रभु को बलिदान चढ़ाया और उसके लिए बड़ी मन्नतें मानी क्योंकि उसने उसे जीवित रहने दिया। इसके बाद उसने ओनियस से विदा ली और अपनी सेना के साथ राजा के पास लौटा। उसने सबों के सामने सर्वोच्च प्रभु के उन चमत्कारों का साक्ष्य दिया जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा था। जब राजा ने हेलियोडोरस से पूछा कि अब किसे यरूशलेम भेजा जाना चाहिए तो उसने उत्तर दिया, यदि कोई आपका शत्रु या राजद्रोही हो तो उसे वहां भेजिए, यदि वो जीवित रह गया तो वो कोड़े खाने के बाद आपके पास लौटेगा। क्योंकि एक दिव्य शक्ति वहां निवास करती है जो स्वर्ग में विराजमान है। वो उस स्थान की रक्षा करता और उसे सहायता देता है। जो उसे हानि पहुंचाने आते हैं वो उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। ये हेलियोडोरस और कोश की रक्षा का वृतांत है।